संगम युग पर भाग्य विधाता बाप ने आकर के हम बच्चों के सोई हुई तकदीर को जगा दी। बाबा मिलने के पहले सारा समय मुख से यही निकलता था, हाय मेरी तकदीर। परंतु बाबा मिलने के बाद हाय मेरी तकदीर नहीं, पर वाह मेरी तकदीर वाह। क्योंकि तकदीर बनाने वाले ने ऐसी तरकीबें बताई, ऐसे उपाय बताए जो हम बच्चों के तकदीर का सितारा चमक उठा। साकार बाबा को देखते थे, बाबा को कितना नशा था और उस नशे में बाबा सदैव बच्चों को भी वो अविनाशी नशा चढ़ाते थे। साकार बाबा कहते थे, मैं इकलौता शिव बाबा का बच्चा हूं, बाकी तुम सब पोतरे और पोतरियां। तो जब इकलौता बच्चा है तो सारी प्रॉपर्टी का मालिक हो गए। बाबा इतना नशे से बोलते थे कि मैं एक ही लाडला सिक्की लदा बाबा का बच्चा हूं। तो बाबा के बोलने से बच्चों को भी बड़ा नशा चढ़ता था, क्योंकि जिसको जिसके सामने सदैव निशाना रहता है उसको नशा चढ़ा रहता। ईश्वरीय नशा तो था, परंतु उसके साथ साथ बाबा को दैवी नशा भी था। ईश्वरीय तकदीर और दैवी तकदीर। बाबा कहते थे, बच्चे अभी अभी शरीर छोड़ूंगा और जाके मिचनू बनूंगा। बाबा का ये बोलना सुनने वालों को भी हमको ऐसा लगता था जैसा हमारे आगे ब्रह्मा बाबा नहीं है परंतु छोटा सा मिचनू श्री कृष्ण। बाबा की स्मृति से स्मृति में इतनी समृद्धि थी जो हमें भी संगम से एकदम नई दुनिया में ले जाते थे। तो बाबा का जब इतनी ऊंची स्थिति, इतनी खुशी और इतना नशा देखने के बाद ऐसा लगता था कि अगर हमारे बाबा को इतना नशा है तो हमें भी इतना नशा। बाबा कहते, बच्चे इस सारे विश्व के अंदर मेरे जैसा बाप तुमको कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो हम भी बाबा को कहते थे, बाबा हमारे जैसे बच्चे तेरे को भी कभी मिलने वाले नहीं। हम ही बच्चे हैं जो तेरे को पहचानते हैं और तेरे को पहचान करके तेरा बन करके और तेरे काम में आते हैं। तो बाबा ने जो इतनी ऊंची तकदीर बनाई, उस तकदीर बनाने वाले बाप के सदैव गुण गाते रहो, खुद के तकदीर के गुण गाओ। जैसा कहा जाता है कि देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, परंतु हमें तो सदैव यही अनुभव होता है कि ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, ये स्थूल वस्तुओं की बात नहीं है, परंतु सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां हम ब्राह्मणों के बिगर और किसी को भी नहीं हो सकती है। तो बाबा ने जो इतनी प्राप्तियां हमें कराई है, अगर आप सदैव बाबा के द्वारा जो हमें मिला हुआ है उसको अंदर ही अंदर रिवाइज करते रहेंगे कि बाबा ने मुझे क्या दिया। वास्तव में देखा जावे तो बाबा ने क्या दिया ये सोचने के बजाय बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया ये सोचना पड़ता, क्योंकि बाप मिला तो सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा। भक्ति मार्ग में भगवान को प्रार्थना करते थे, भगवान हमारी एक इच्छा पूरी करो, अपना नौकरी रख दो, नौकर नहीं तो नौकर का नौकर चाकर रख दो, भला चाकर भी नहीं तो चाकर का भी नौकर चूकर रख दो। बाबा ने आके हमको नौकर चाकर चूकर नहीं रखा, परंतु डबल सिरता धारी बना दिया, अपने दिल में बिठा दिया। कहां हम पट में गिरे पड़े थे, बाबा ने हमें फर्श से उठा के अर्श के ऊपर चढ़ा दिया। तो जब बाबा के द्वारा हम बच्चों को इतनी प्राप्तियां होती है, उन प्राप्तियों का जो नशा है उस नशे के आधार पर ही कितना भी बड़ा कार्य हुए, कितनी भी बड़ी समस्या हुए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हुए, उन सब का बहुत सहज मुकाबला कर सकते। जैसा हम देखते हैं साकार बाबा को परिस्थितियां ये खेल लगती थी। क्यों खेल लगती थी? क्योंकि बाबा सदैव अपने उस ईश्वरीय नशे में रहते थे, पोस्ट में रहते थे, पोजीशन में रहते थे। जो ईश्वरीय पोजीशन में रहता है, माया का अपोजिशन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, परंतु जब हम अपना पोजीशन छोड़ देते हैं तभी माया क्या करती है, अपोजिशन करती। साकार बाबा अपना अनुभव बताते थे। बाबा कहता था मैं बूढ़ा हूं, मेरे को इतना नशा चढ़ता है, तुमको क्यों नहीं नशा चढ़ता। और सचमुच वंडर लगता था कि बाबा को इतना नशा चढ़ता है बूढ़ा होते हुए, हमें तो ज्यादा नशा चढ़ना चाहिए, हम तो जवान हैं। उसके बाद मम्मा को देखते थे, मम्मा अति गंभीर थी, परंतु मम्मा को भी अपनी तकदीर का कितना नशा था कि मैं श्री लक्ष्मी बनने वाली हूँ। मम्मा का नशा मम्मा के लक्षणों से दिखाई पड़ता था, क्योंकि जब तक लक्ष्य पक्का नहीं होगा तो लक्षण नहीं आ सकते। सदैव उस पोजीशन में रहना, सदैव उस गंभीरता में रहना, सदैव उस नई दुनिया की स्मृति में रहना, जो सामने वाले को भी नई दुनिया की स्मृति आ जावे। तो जितना जितना हमको बाबा के द्वारा जो मिला है उसका हम स्मरण करते हैं। कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ, ज्ञान के सिमरण से तो सुख मिलता ही है, बाप के सिमरण से तो सुख मिलता ही है, परंतु ईश्वरीय प्राप्तियों से बहुत ही सुख मिलता। तो बाबा ने बच्चों को सर्व प्राप्तियां कराई, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को अपना वारस बनाया। परंतु ये नशा उसको ही चढ़ता है जो सदैव मर्यादा की लकीर के अंदर चलते हैं। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय मर्यादा के लकीर के अंदर चलते हैं, बाबा के आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार बन के चलते हैं, तो हमें नशा चढ़ता है। अगर हम बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन करके चलते हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं को छोड़ के चलते हैं, तो हम अपने निशाने से दूर हो जाते हैं। जिनको निशाना दूर दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम सभी का निशाना एक ही है कि हमें विश्व का मालिक बनना है, हमें बाप समान बनना है, हमें नई दुनिया में जाना है। परंतु अगर मर्यादा पर चलते हैं तो वो निशाना सदैव सामने रहता है। वैसे भी आप देखो, जब रेस होती है तो जितना जितना दौड़ने वाले जो है वो निशाने के नजदीक पहुंचते हैं, उतना उतना उनकी खुशी बढ़ती है कि अभी पहुंच गए, अभी पहुंच गए। तो बाबा हमेशा कहते कि बच्चे, तुम अभी स्वर्ग में इतने नजदीक पहुंचे हो। सिंधी में उसको कहा जाता है षडपंद। षडपंद का मतलब सामने वाला आवाज देवे, हम उसको रिस्पांस करें। तो स्वर्ग तुम बच्चों के इतना सामने है, तुम्हारी राजाई तुम्हारे इतना सामने है, तुम इतने नजदीक पहुंचे हुई हो। तो जब हम इतने नजदीक पहुंचे हैं, हमारा लक्ष्य इतना नजदीक है, तो हमारे जैसी तकदीर किसकी हो सकती है जो पुरानी दुनिया में रहते हुए सदैव नई दुनिया के नजारे हमारे आंखों के सामने रहे। परंतु उसके लिए, नई दुनिया के नजारे आंखों के सामने रहने के लिए, बाबा ने हमें बेहद का बैरागी बनाया। बाबा के जो भी महावाक्य हैं, आप उसको रिवाइज करो कि बच्चे, ये दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं। तो फील होता है कि ये दुनिया हमारे रहने के लायक नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें इससे एकदम न्यारा बना दिया। तो जब बाबा ने हमें इससे न्यारा बना दिया, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं, सारी दुनिया से अलग है, तो हमारी एक्टिविटीज भी वैसी ही होनी चाहिए। तो सदैव अगर हम बाप को याद करते हैं, बाबा का आज्ञाकारी बन के चलते हैं, मर्यादाओं पर चलते हैं, तो हमें खुद के ऊपर खुद नाज होता है। अगर हम ईश्वरीय मर्यादाओं को तोड़ते हैं, तो हमें खुद के लिए भी संतुष्टता नहीं होती है, खुद का भी नशा नहीं रहता है और बाप का भी नशा नहीं रहता। तो इसीलिए सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए, जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं और जितना जितना ईश्वरीय प्राप्तियों को रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवाइज करने से ही रियलाइजेशन की शक्ति आती है। जैसा दूसरे ज्ञान की बातों को रिवाइज करते हैं, वैसा ईश्वरीय प्राप्तियों को भी घड़ी घड़ी अपने अंदर रिवाइज करने की आवश्यकता है। और जितना जितना रिवाइज करेंगे, उतना उतना हमको नशा चढ़ेगा। जितना जितना नशा चढ़ेगा, उतनी उतनी खुशी होगी। और हम अपने से पूछे कि मुझे अभी क्या चाहिए। जब तकदीर बनाने वालों ने हमारी तकदीर बनाई, भाग्य विधाता ने हम बच्चों के हाथ में श्रेष्ठ तकदीर बनाने की कलम दे दिया है। बाबा भाग्य विधाता है, तकदीर बनाने वाला है, परंतु बड़ा उस्ताद है। वो हमारी तकदीर नहीं लिखता है। अगर वो एक की तकदीर लिखे, एक को राजा बनावे और दूसरे को अगर वो प्रजा बनावे तो पक्षपात हो जावे। भगवान उसको ही कहा जाता है जो सब उसके लिए समान है। इसीलिए आप देखो जो भी वैजयंती माला है 108 की माला है या 9 लाख की माला है, उसमें फर्स्ट मनका है वो भी फूल के नजदीक है और लास्ट मनका जो है वो भी फूल के नजदीक। उसके लिए सब बच्चे समान है, उसका भंडारा खुला पड़ा है। तो भाग्य विधाता हम बच्चों को भाग्य बनाने का तरीका बताता है, हमें युक्तियां बताता है, हमारे हाथ में श्रेष्ठ कर्म की कलम देता है। श्रेष्ठ कर्म की कलम के द्वारा हम जितना लंबा चाहिए उतने अपनी तकदीर को खींच सकते हैं। जो तकदीर देखने वाले होते हैं ना, वो हमेशा लकीरें देखते हैं। तो बाबा कहता है तुमको जितनी लकीर लंबी चाहिए उतनी लंबी लकीर खींचो। मैंने तुम्हें भाग्य बनाने का तरीका बता दिया है, परंतु सिर्फ इतना ही नहीं किया बाबा ने, हमारा भाग्य उदय किया। बाबा कहता है मैं भाग्य विधाता हूँ तो तुम मास्टर भाग्य विधाता हो। तुम सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बनाते हो, परंतु तुम सारे विश्व की तकदीर बनाने के लिए तुम निमित्त बने हुए हो। आप ही बताइए, जिसको अगर सदैव ये याद रहेगा कि सर्व की तकदीर बनाने वाले बाप ने हमें मास्टर तकदीरवान बनाया है, मास्टर भाग्य विधाता बनाया है, तो तकदीर औरों की बनाने के बगैर रह सकेगी? हम जानकी दादी से पूछते थे, दादी इतनी बड़ी आयु में लास्ट में भी आपने देखा होगा कितनी भागदौड़ करती थी सब जगह पर, दादी क्यों भागदौड़ कर रहे हैं? तो दादी अपना अनुभव बताती थी, मेरे को एक ही लगन है, जो मेरे को बाबा से मिला है वो मुझे सबको देना। ये है मास्टर भाग्य विधाता का लक्षण। उसको जो प्राप्ति हुई है वो दूसरों को देने के बगैर रह नहीं सकता है। वो भागता रहेगा, वो ना समय को देखेगा, ना तबीयत को देखेगा, ना परिस्थिति को देखेगा, किसी भी बात को नहीं देखेगा, और वो क्या करता रहेगा, भाग्य बांटने का काम करता रहेगा। तो इसीलिए अपने भाग्य की तो भले गीत गाओ, परंतु औरों का भाग्य बना करके उनसे दुआएं लो, तभी आपका भाग्य ऊंचा बन सकता है। जब तक दुआओं का खाता हमारा जमा नहीं है तो हमारा जो भाग्य है वो ऊंचा नहीं हो सकता है। और दुआओं का खाता उनका ही जमा होता है जो औरों को मदद करते हैं, औरों को सहयोग देते। तो बाबा कहता है कि तुम्हें सारे विश्व को सहयोग दे करके और इस पुरानी दुनिया को नया बनाने का कार्य करना है। तो इसीलिए सदैव हमारा जो समय है, श्वास है, संकल्प है, ये सदैव ईश्वरीय कार्य में लगा रहे। और जितना जितना हमारा ये सब कुछ तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प सब सफल होता जाता है, उतना उतना हमारे जीवन में सफलता मिलती है। और सफलता की निशानी है खुशी। जो सफल होता है उसको हमेशा खुशी रहती है, असफल होने वाले को खुशी नहीं होगी। तो इसीलिए जिसको खुशी है उसको भाग्य भी जरूर याद होगा, जिसको भाग्य याद होगा उसको खुशी भी होगी कि मेरा भाग्य इतना ऊंचा है। तो अभी अपने से हम पूछे कि जिसको भगवान मिल गया उसको और क्या चाहिए? अभी कुछ चाहिए? बाबा बच्चों से पूछता है, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान जब प्रसन्न हो जाता है ना, तब भगवान भक्तों से पूछता है तुम्हारे को कुछ चाहिए, वर मांग वर मांग। अरे हमारा वरदाता तो हमको रोज थालियां भर भर के वर दे रहा, झोलियां भर भर के वर दे रहा है, बाबा के कितने वरदान हमको मिल रहे। तो आप बताइए ऐसे कोई नसीबवान होंगे जो भगवान के द्वारा अथाह वरदान मिले? बाबा का एक एक स्वमान तो याद करो, बाबा हम बच्चों को क्या समझता क्या है। बाबा हमें पहचानता है, हम खुद को खुद नहीं पहचानते। इसीलिए इतनी खुशी, इतना नशा अपने अंदर नहीं आता है। परंतु बाबा यथार्थ रीति से जैसा हमें पहचानता है, क्योंकि बाबा हमारी संपूर्ण स्थिति को देखता है, पुरुषार्थी स्थिति को, अपूर्ण स्थिति को नहीं देखता। तो वैसा ही जब हम अपनी संपूर्ण स्टेज को देखते हैं, इसीलिए शुरू शुरू में बाबा ने सभी को देवताई ड्रेस पहना करके और फिर फोटो निकाले थे। एक सिंगल सिंपल जैसा ड्रेस है देव, ये योगी ड्रेस में फोटो निकाला और दूसरा सजे सजाए रूप में, देवताई रूप में फोटो निकाल के बाबा ने कहा फ्रेम करके घर में लगा के रखो। वैसा भी देखो कोई डॉक्टर बनता है या कोई डिग्री लेता है, डिग्री लेने के पहले ही वो वैसा कोट वोट पहन करके और फोटो निकाल के रखते। अरे तुम डॉक्टर है कि नहीं? नहीं बन रहा हूँ। वकील है कि वकील होगा? नहीं, पर फोटो लगा के रखेंगे। तो बाबा ने भी कहा था सभी फोटो लगा के रखो, तुमको याद रहेगा हमारी तकदीर कितनी ऊंची है। तुमको नशा रहेगा, तो जब ये नशा रहेगा कि हमारी तकदीर ऊंची है, तो जरूर कर्म भी क्या होगे, ऊंचे होगे ना। तो इसीलिए सदैव इस बात को याद रखो कि बाबा ने जो हम बच्चों को सारे विश्व की तकदीर बनाने की, सारे विश्व को परिवर्तन करने की जवाबदारी दी हुई है, वो हमें बखूबी से निभाना है। तभी हम भी खुश रह सकते हैं, औरों को भी खुशी बांट सकते हैं, और सदैव क्या है, सदैव हल्के रह सकते हैं। किसी बात का हमारे ऊपर बोझा नहीं रहेगा। तभी औरों का बोझा उठाने वाले, औरों को बोझे से मुक्त करने वालों के ऊपर कभी भी व्यर्थ बातों का बोझ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बाबा ने हमारी तकदीर बनाई हुई है, उसको याद रखते हुए और हमारे इस ईश्वरीय खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, इस बात की स्मृति रखते हुए सदैव खुश रहो, आगे बढ़ो, औरों को बढ़ाते रहो, तो अनेकों की आशीर्वाद हमें मिल जाएगी और हम बाबा जो चाहते हैं हमारे से कि मेरे बच्चे जो है सब मेरे समान बने और मेरे समान बन करके नई दुनिया में राजाई पद प्राप्त करे। बाबा को बच्चों के लिए भी कितना नशा है। बाबा कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई बाप है जिसके सारे बच्चे राजा बच्चे? मेरे तो सारे बच्चे राजा बच्चे। लौकिक में राजा का जो फर्स्ट नंबर का बच्चा होता है उसे एक को ही अधिकार होता है राजगद्दी पर बैठने को। यहाँ सब बच्चों को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार, पर बैठने वाले चाहिए, बैठने वाले में वो पात्रता चाहिए। संगम युग पर बाबा हमें स्वराज अधिकारी बनाता है और जो स्वराज अधिकारी बनते हैं वो जाकर के विश्व राज अधिकारी बनते हैं। तो बाबा की हम बच्चों को खुली ऑफर है कि बच्चे आप विश्व राज अधिकारी बनने के लिए अभी स्वराज अधिकारी बनो, क्योंकि मैं मेरे सब बच्चे जब राजा बच्चे हैं मैं उनका बाप हूँ। बाप को नशा रहता है, तो बाप को अगर इतना नशा है तो हम बच्चों को भी इतना ही नशा रखना है और उस नशे को सामने रखते हुए अपने निशाने तक पहुंचना है। इसीलिए गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर वाह। ओम शांति।